الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اکثر الصلاة علی یوم الجمعة فإنه یوم مشہود تشہده الملائکہ تم جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے اللہ کے فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوته حیث کان جو درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو صحابہ کرام علیہ مردوا نے عرض کیا وبعد وفاتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی تو میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وبعد وفاتی ہاں میرے وصال ظاہری کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا درود پڑھنے والا کہیں بھی درود پڑے گا اس کی آواز مجھ تک پہنچ جائے گی اور پھر اس کی وجہ بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجساد مبارکہ کو کھانا حرام کر دیا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے پروگرام درس بخاری شریف آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مدنی چینل کے ناظرین آج کے اس سلسلے میں بخاری شریف سے جو حدیث مبارکہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ شارع صحیح مسلم علامہ نووی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث مبارکہ بہت زیادہ اہم اور اعظم حدیث مبارکہ ہے اس کے فوائد کثیر ہیں اور یہ حدیث مبارکہ ان احادیث مبارکہ میں سے ہے کہ جن پر احکام اسلام کا مدار ہے اور ایک جماعت جو ہمارے آئمہ کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ تہائی اسلام ہے یعنی اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں اگر ان کو تین حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو ایک حصہ اس حدیث مبارکہ کے اوپر ہے اور جو باقی دو حدیثیں ہیں وہ کون سی ہیں کہا ایک تو وہی حدیث مبارک جو بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال پر ثواب کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہوتا ہے اور جو تیسری حدیث مبارکہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ کسی بھی مسلمان کا اچھا عمل یہ ہے کہ وہ غیر متعلقہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں نہیں پڑتا اپنی ذات کو ان سے دور کر لیتا ہے لا یعنی کاموں کے اندر مشغول نہیں ہوتا یہ دو حدیث مبارکہ اور ایک وہ حدیث مبارک جس پر ہم کلام کرنے جا رہے ہیں اور امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ یہ جو حدیث مبارک ہے ये चौथाई इस्लाम यानी इस्लाम के जितने अहकाम हैं उनको चार हिस्सों पर तकसीम करें तो जो चौथा हिस्सा है वो इस हदीसे मुबारका के ऊपर है, और दो वही हदीसे मुबारका जो मैं पहले बयान कर चुका हूं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, और जो तीसरी हदीसे मुबारका है, मिन हुस्नि इस्लामिल मरई तर्कुहु माला यानी, और इसके साथ जो चौथी हदीसे मुबारका उन्होंने ऐड की वो ये है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीही मा युहिब्ब लि नफ्सिही, तो में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही चीज पसंद ना करे जो अपनी जात के लिए पसंद करता है। तो इस तरह ये चार अहादीस मुबारक हैं जिनके बारे में इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि ये चौथाई इस्लाम है, एक वो हदीस मुबारक और तीन ये वाली हदीस मुबारक। आइए समाज फरमाइए कि वो कौन सी हदीस मुबारक है जिस पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ले फरमाते हैं कि हमें यह हदीस बयान की है हजरत अबू नुआइम ने, वो कहते हैं कि हमें जकरिया ने हदीस बयान की, और वो हजरत आमिर से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने हजरत नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हों को यह बात कहते हुए सुना है, और वो आगे से ये कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। मदीने चैनल के नाज़रीन, ये जो हजरत नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हों, ये सहाबी रसूल हैं, मशहूर सहाबी हजरत बशीर बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हों के बेटे, और अंसार के दो कबीले थे, कबीला खजरज और औस, कबीला खजरज से इनका ताल्लुक था, और मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला के भांजे भी हैं। हजरत नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला हिजरत के 14वें महीने रबीउ सानी 2 हिजरी में पैदा हुए, और हिजरत के बाद अंसार के यहां सबसे पहले जिस बच्चे की विलादत हुई थी वो हजरत नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला अन्हो ही हैं, और आपके 6 माह के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हो पैदा हुए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत सईदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे हैं, और हजरत नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला ने 65 हिजरी में वफात पाई, उस वक्त आपकी जो उम्र मुबारक थी वो 64 बरस थी, 64 साल के थे, 64 साल आपने जिंदगी गुजारी। आप कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को यह हदीस मुबारक बयान करते हुए खुद सुना है, हजूर नबी अलैहि सलाम ने क्या हदीस बयान फरमाई? आप कहते हैं अल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन, कि हलाल वाजे है और हराम भी वाजे है, हलाल भी वाजे हो गया हराम भी वाजे हो गया, यानी इनमें डाउट नहीं रहा, कुरान और हदीस ने हलाल को भी बिल्कुल वाजे कर दिया है और हराम को भी वाजे कर दिया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वबैनहुमा मुशब्बहातुन ला यालमुहा कसीरुम मिनन नास, और इन दोनों के दरमियान में कुछ मुश्तबे चीजें हैं जिनके मुतालिक बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते, और बास किताबों के अंदर यही हदीस मुबारक कुछ अल्फाज दीगर के साथ भी बयान की गई है, जैसे बैनहुमा उमूरुम मुशब्बहातुन ला यालमुहुन्न कसीरुम मिनन नास, मफहूम और माना वही है, मुराद वही है कि इन दोनों के दरमियान यानी हलाल और हराम के दरमियान में कुछ मुश्तबे चीजें हैं जिनके मुतालिक बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते। अब मुश्तबे चीजों से बचने का फायदा क्या होगा, इसके बारे में भी हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फमन इत्तकल मुशब्बहाती इस्तबरा लिदीनिही व इर्ज़िही, तो जो बंदा भी मुश्तबे चीजों से बच जाता है, अपनी जात को बचा लेता है, तो गोया उसने अपना दीन और अपनी इज्जत को उसने बचा लिया, और जो मुश्तबे चीजों से ना बचे तो फिर नुकसान क्या होगा, इस हदीस मुबारका में उसकी तरफ भी आगाही फरमाई गई। और इरशाद फरमाया वमन वका फिशुबुहात करा इन यरा हौल अलहिमा यूशिकु अन युवाकियाहु, और जो मुश्तबे चीजों में पड़ा वो हराम में मुबतला हुआ, वो उस चरवाहे की तरह है जो किसी शाही चरागाह के करीब करीब अपना रेवड़ ले जाता है और उसे चराता है, उसके चरागाह में चले जाने का अंदेशा होता है कि ऐसी चरागाह के करीब ले गया कि जो शाही चरागाह है, बकरियां आसपास में चर रही, तो कहा करीब है कि वो जानवर, वो बकरियां, वो रेवड़ जो ममनुआ जगह है कहीं उसमें ना दाखिल हो जाए। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला व इन लिकुल्ली मलिकिन हिमा, अला इन हिमल्लाहि फी अर्दिही महारिमुहु। फरमाया कि खबरदार सुन लो, और बेशक हर बादशाह की एक मखसूस चरागाह होती है, और सुनो इस जमीन में अल्लाह तबारक व ताला की मखसूस चरागाह उसकी हराम करदा अशिया है, या उसके हराम करदा वो काम है जिनसे अल्लाह तबारक व ताला ने हमें मना फरमा दिया। जिन चीजों को रब तबारक व ताला ने हमारे लिए हराम करार दे दिया वो अल्लाह तबारक व ताला की मखसूस चरागाह है। और फरमाया अला व इन नफिल जसदी मुदगा, फरमाया खबरदार और बेशक जिस्म में गोश का एक लोथड़ा है, इजा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु, जब वो दुरुस्त रहता है, ठीक रहता है, तो तमाम का तमाम जो वजूद है, तमाम का तमाम जो जिस्म है वो भी दुरुस्त हो जाता है। व इजा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु, और जब वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। अला वही अल कल्ब, वो क्या है? खबरदार फरमाया सुन लो, वो लोथड़ा दिल है। मदनी चैनल के नाजरीन, इस हदीस मुबारका के बारे में आता है कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ले, जो हम करोड़ों हनफियों के इमाम हैं, अपने फर्जंद जनाबे हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह को आपने नसीहत फरमाई, और नसीहत करते हुए ये तहरीर फरमाया कि ए नूरे नजर, मैंने 5 लाख अहादीस मुबारका में से चुनकर ऐसी 5 अहादीस निकाली हैं, मुंतखब की हैं, कि अगर तुम इनको याद करके इन पर पूरे एतिमाद के साथ अमल करोगे तो तुम दोनों जहानों की सआदतों से सरफराज हो जाओगे। और वो 5 अहादीस क्या हैं? उनमें से एक हदीस मुबारक इन्नमल आमालु बिन्नियात, और दूसरी हदीस मुबारक मिन हुस्नी इस्लामिल मरई तर्कुहु माला यानी, और जो तीसरी हदीस मुबारक है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लियखीही मा युहिब्ब लिनफ्सिही, और चौथी हदीस मुबारक जिसमें फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है कि जिसकी जुबान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान सलामत रहें। और जो 5वीं हदीस मुबारक है, यही हदीस मुबारक जिस पर आज हम गुफ्तगु कर रहे हैं, अल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन, कि हराम भी बिल्कुल वाज़ह है, हलाल भी बिल्कुल वाज़ह है, और इन दोनों के माबैन बास ऐसे मुश्तबे उमूर हैं कि जिनसे कसीर लोग हैं, लोगों की एक तादाद है जो ला इलम है और उन्हें इसके बारे में मालूमात नहीं है। इस हदीस मुबारका की अहमियत के हवाले से उलमा ने अपनी किताबों में लिखा कि इसकी अहमियत की वजह यह है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने यह रहनुमाई की है कि इंसान का खाना, उसका पीना और उसका जो लिबास है वो कैसा होना चाहिए, और हलाल चीजों के हुसूल की तरफ बंदे की रहनुमाई की गई है, और यह बता दिया गया कि उमूरे मुश्तबिहा को बंदे ने तर्क करना है। और आमतौर पर यही चीजें होती हैं कि जो इंसान को निखार देती हैं। आमतौर पर बंदे के पास 3 चीजें तो जरूरी हैं, खा वो अमीर है, गरीब है, खाता भी है, पीता भी है और पहनता भी है, कपड़े भी उसके पास होते हैं, और उसका खाना, उसका पीना, ये 2 चीजें भी उसे आमतौर पे अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मुयस्सर होती हैं, क्योंकि तमाम लोगों का जो रिस्क है वो अल्लाह तबारक व ताला के जिम्मे करम पर है। रब अपने बंदों को रिस्क अता फरमाता है, उन्हें लिबास भी दिया जाता है। वो कैसे मिलता है, कैसे अहतमाम होते हैं, ये एक अलग बहस है, लेकिन आम तौर पर अमीर हो गरीब हो पहनने के लिए कपड़े भी मौजूद हैं जिससे सितर छुपा सकता है, और खाने के लिए भी मुयस्सर है, पीने के लिए भी मुयस्सर है, और इन तीनों चीजों की तरफ बंदे की रहनुमाई कर दी जाती है। और ये तीन चीजें इतनी अहम है कि एक हदीस मुबारक में फरमाया कि बंदा कहता है या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अपने रब की बारगाह में दुआएं करता है, इल्तिजाएं करता है, अल्लाह से मांगता है, और हाल उसका यह है कि उसका पीना हराम और उसका पहनावा हराम, जो उसकी गजा है वो हराम, ये खाना भी हराम पीना भी हराम, जो पहना है वो भी हराम। फरमाया फिर क्यों कर उसकी दुआ को कबूल किया जाएगा। इंतहाई तवज्जो के काबिल ये चीजें हैं, और इस हदीस मुबारका में इस बात की तरफ रहनुमाई कर दी गई कि इंसान का खाना उसका पीना उसका लिबास जो है वो हलाल होना चाहिए, और हलाल चीजों के हुसूल की तरफ रहनुमाई की गई, और ये फरमा दिया गया कि उमूरे मुश्तबिहा से इज्तेनाब किया जाए, उनसे अपनी जात को बचाया जाए। ये उमूरे मुश्तबा है क्या, इसकी तशरीह में उलमा के मुख्तलिफ अकवाल हैं। अलामा यानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अकवाल जिक्र फरमाए हैं उनमें से एक कौल ये है कि अलामा खिताबी ने इस हवाले से लिखा कि उमूर मुश्तबिहा फी नफ्सिही ये मुश्तबे नहीं होते, बल्कि इनका जो मुश्तबे होना है वो एक इजाफी चीज है, यानी जो शख्स इन उमूर का हुक्म नहीं जानता उस पर ये मुश्तबे हैं। और उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में हर चीज को बयान कर दिया, तिबयान लिकुल्ली शय, और हर रतबो याबिस का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मौजूद है। हर चीज का हुक्म बयान कर दिया गया, उसकी दलील को कायम कर दिया गया है, लेकिन एक बयान होता है जमई, उसको हर शख्स जान लेता है, और एक बयान होता है खफी, जिसको सिर्फ उलामा ही इस्तेहाद और इस्तिम्बात के तरीकों से जानते हैं। तो फरमाया कि यहां अमूरे मुश्तबिहा से जो मुराद है वो फी नफ्सी ही ये मुश्तबे नहीं है, बल्कि इनका मुश्तबे होना एक इजाफी चीज है, यानी जो शख्स इन उमूर का हुक्म नहीं जानता उसके ऊपर ये मुश्तबे हैं। और दूसरा कौल ये है कि अमूरे मुश्तबिहा से मुराद उमूरे इस्तिहादिया हैं, मुश्तहिद इन्हें बयान करता है, यानी जिस चीज का हलाल या हराम होना कुरान मजीद और हदीस मुबारका की सरी इबारात से मालूम ना हो सके और ना ही इसके ऊपर इजमा हो, जैसे इस जमाने के अंदर कसीर मसाइल हैं कि जिनके ऊपर बहस की जाती है, तो ये उमूरे इस्तिहादिया हैं जिनका हुक्म मुश्तहिद अपने इस्तिहाद के जरिए से मालूम करता है और इसको हलाल या हराम के साथ फिर लाहिक कर देता है। अगर मुश्तहिद किसी चीज को अपने इस्तिहाद से हलाल करार देता है तब भी तकवा का तकाजा यह है कि इसका इर्तिकाब करने से एहतराज किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि उसका जो इस्तिहाद है वो खता पर मबनी हो। इस वजह से तकवा का तकाजा यही बना कि अपनी जात को उस अमर से भी इंसान बचाए। और तीसरा कौल ये है कि उमूरे मुश्तबिया से मुराद अमूरे मकरूहा है, हदीस से मकसूद उमूरे मकरूहा से इज्तिनाब पर गोया के तंबीह करना है, बंदे को उभारना है, तरगीब दिला रहा है, क्योंकि बहुत से लोग उमूरे मकरूहा से इज्तिनाब न करने में कोई झिझक महसूस ही नहीं करते, कोई हिजाब महसूस ही नहीं करते, और ये ख्याल करते हैं कि बहरहाल ये हराम तो नहीं है, किसी बात से मना किया जाए तो पूछ लेते हैं क्या ये हराम है। भाई हराम नहीं है तो मकरूह तहरीमी हो सकता है, यानी गुनाह का काम। जैसे किसी शख्स ने पूछा किसी गुनाह के बारे में कि ये हराम है या मकरूह तहरीमी, तो कहा कि ये मकरूह तहरीमी हो या हराम हो ये पता होना चाहिए कि ये गुनाह है या नहीं, गुनाह बड़ा हो या छोटा हो, गुनाह तो गुनाह ही होता है, उससे अपनी जात को बचाना चाहिए। तो उमूर मुश्तबिहा से मुराद उमूर मकरूहा है, गोया इस हदीस मुबारका में अगर ये मुराद लिया जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उमूर मकरूहा से इज्तिनाब करने पर गोया बरंगेख्ता किया है, हमें उभारा है, हमें तरगीब दिलाई गई है कि हम इससे भी अपनी जात को बचा के रखें। और चौथा कौल ये है कि उमूर मुश्तबिहा से मुराद उमूर मुबाहा है, यानी जो इंसान के लिए मुबाह होते हैं, जायज है कि उनको किया जा सके, और तकवा का तकाजा क्या है, تقویٰ کا تقاضا بالکل اس کے اگینسٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اس سے بچے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے خلفاء راشدین، اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان مباحات سے بھی اجتناب کیا کرتے تھے. ان نفوس قدسیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اچھے کھانے، اچھے مشروبات، اچھے ملبوسات، اچھے مکانات کو قصدن حاصل ہی نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے اجتہاد اور ارادے سے فقیرانہ اور درویشانہ زندگی بسر کی ہے. تو اس سے مراد امور مباحہ ہیں، اور امور مباحہ سے بھی تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ذات کو انسان بچائے. اور ایک پانچواں قول علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو نقل فرمایا وہ یہ ہے کہ امور مشتبہات سے وہ امور مراد ہیں جن کی حلت اور حرمت کے اندر دلائل متعارض ہو جاتے ہیں، اور ان امور میں پھر احتیاط کیا ہوتی ہے، وہاں پر احتیاط اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بھی ترک کر دیا جائے، کیونکہ دلائل متعارض ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ اختیار کر جو شک میں ڈالنے والی نہیں ہے. یعنی جو شک میں چیز ڈال لئی اسے ترک کر دیا، اور جس میں یقین ہے اسے پکڑ لیا. علماء نے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر اس شے کو ترک کر دے، چھوڑ دے، کہ جس کے حلال ہونے میں اسے شک ہو، اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں وہ انجانے میں حرام میں ہی نہ پڑ جائے، بلکہ اسے چاہیے کہ جس بات میں اسے شک ہو اسے چھوڑ کر وہ اس بات کو اپنا لے کہ جس کے بارے میں اسے یقین ہے. ایک طرف شک ہے، دوسری طرف اس کے اگینسٹ یقین ہے، تو شک والی کو ترک کر دے اور جو یقین والی ہے اسے اختیار کر لے. اور اس میں یقین ایسا ہو کہ بندے کو شبہ لاحق نہ، کیونکہ جو یقین ہے اس میں شبہ پھر نہیں آیا کرتا، اس میں پھر بندے کا دل مطمئن ہوتا ہے، نفس پر سکون و اطمینان ہوتا ہے، اور اسے خالص حلال کی خواہش رہے، اور وہ حرام اشیاء، شبہات اور ہر ان چیزوں سے یا ان باتوں سے دور ہو جائے کہ جس میں تردد ہوتا ہے، جس میں کسی بھی قسم کا شک ہوتا ہے. مزید چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے، حلال بھی چونکہ واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، تو ہم سیکھیں اور عمل کریں. اسی طرح جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے اپنی ذات کو محفوظ رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم.
ایمان ہے